अब आगे आपने देखा कि रूही रुद्र से उसे छोड़ देने को कहती है ताकि वो दी से मिल सके। रुद्र रूही से अपनी बात मानने को कहता है जिसके बदले में वो उसे दिशा से मिलने देगा। रूही मान जाती है। रुद्र उसे अपनी पसंद की चूड़ियां पहनने को कहता है। दूसरी तरफ दिशा बॉडीगार्ड से हटने को कहती है। देवांश दिशा के बालों को स्मेल करता है और उसे दिशा के बालों की खुशबू पसंद आती है। दिशा गलती से देवांश से टकरा जाती है। देवांश उसे संभालने के लिए पकड़ता है। दिशा देवांश से बॉडीगार्ड्स को हटाने के लिए कहती है। देवांश कोशिश करने को कहता है। रुद्र रूही को पिंक कलर की चूड़ियां पहनाता है और उसके हाथों को चूमता है। रूही अपना हाथ छुड़ाकर दिशा के पास भाग जाती है और उसकी चिंता करती है। दिशा और रूही मॉल से चली जाती हैं। रुद्र और देवांश उन्हें जाते हुए देखते हैं और सिंघानिया विला चले जाते हैं। अगली सुबह दिशा रूही को कॉलेज जाने के लिए उठाती है, लेकिन रूही मना कर देती है। दिशा समझ जाती है कि रूही डरी हुई है। दिशा रूही को समझाती है कि उसे डरकर छिपना नहीं चाहिए। चैप्टर 28। दिशा की बात सुनकर रूही उठकर बैठ जाती है और दिशा को देखते हुए कहती है, पर दी, मुझे उनसे काफी डर लगता है। उनकी आंखें मुझे काफी अजीब तरह से देखती हैं, जो मुझे ना चाहते हुए भी उनसे डरने पर मजबूर करती है। इतना बोल उसकी आंखों में ना चाहते हुए भी आंसू आ जाते हैं। वहीं दिशा रूही की आंखों में आंसू देख उसे कहती है, रूही तू चिंता मत कर, उनकी आंखें सच में भयानक हैं। मुझे भी उनकी आंखें देख डर लगता है, इसलिए तो उनकी आंखों में मत देखा कर। वैसे भी उनकी जल्द ही शादी होने वाली है, एक बार उनकी शादी हो गई तो वे तुझे परेशान नहीं करेंगे। दिशा की बात सुनकर रूही को भी थोड़ी हिम्मत मिलती है और वे दिशा को देख कहती हैं, दी आप ठीक कह रही हैं, मुझे किसी से इतना नहीं डरना चाहिए, आप यहीं रुकिए, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। रूही के इतना बोलते ही दिशा रूही के गाल पर किस करते हुए कहती हैं, ये हुई ना मेरी रूही वाली बात। इतना बोल वे मुस्कुराने लगती हैं। वहीं रूही भी मुस्कुरा देती है, फिर बाथरूम में फ्रेश होने चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ सिंघानिया विला। हॉल में रणवीर, प्रीता, कामना, धीरज सब बैठे हुए थे। वहीं सुमन जी उन सभी को नौकरों की मदद से चाय और नाश्ता दे रही थी। चाय और नाश्ता देने के बाद सुमन भी धीरज के बगल में बैठ चाय ले उसे पीते हुए रणवीर जी को देख कहती हैं, पापा, लड़की वाले सुबह ही आने वाले थे ना, वे अभी तक आए नहीं, कहाँ रह गए? सुमन की बात सुनकर रणवीर जी बोले, सुमन बहू, वे बस आते ही होंगे, और मैंने पंडित जी को भी आने के लिए बोल दिया है। हम आज ही शादी की डेट भी निकाल लेंगे, क्योंकि मुझे अपने पोते पर कोई भरोसा नहीं कि वे कब शादी के लिए मना कर दे, इसलिए मैं जल्द से जल्द चाहता हूँ कि ये शादी हो जाए, इसलिए अभी थोड़ी देर में लड़की वाले के साथ पंडित जी भी आते होंगे। रणवीर जी की बात सुनकर कामना बोली, ये आपने बिल्कुल सही किया पापा, वरना सच में रुद्र का कोई भरोसा नहीं है, कब उसका दिमाग खराब हो और वे कब शादी के लिए इनकार कर दे। मैं तो कहती हूँ पापा, आप आज ही उस लड़की से रुद्र की शादी करवा दीजिए, जिसके रुद्र को शादी के भागने का मौका ही ना मिले। फिर मैं भी अपने देवांश के लिए एक अच्छी और अमीर परिवार की लड़की देखकर उसकी भी शादी कर दूँ। कामना की बात सुनकर प्रीता बोली, तू चुप कर, तुझे तो हर चीज़ में सिर्फ जल्दी ही रहती है, शादी में इतनी सारी तैयारियाँ होती हैं, एक दिन में ये सब कैसे होगा? अपनी माँ की बात सुनकर कामना मुंह बनाते हुए कहती हैं, फिर माँ, आप करवाते रहिए अपने पोते की शादी, क्योंकि जो भी लड़की हो वे अगर रुद्र के साथ ज्यादा देर तक रही तो वे उसके गुस्से को देखकर खुद बखुद ये शादी करने से इनकार कर देगी। कामना की बात पर प्रीता गुस्से से अपनी बेटी को देखने लगती है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसकी बेटी का उसके खुद के जबान पर कोई कंट्रोल नहीं है, उसके मन में जो भी आता है वे बिना सोचे समझे बोल देती है। वे गुस्से में कामना को देख ही रही थी, तभी उन सभी के कानों में किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है, जिसे सुन सब पीछे मुड़कर देखते हैं तो पीछे रणवीर जी के दोस्त धनराज जी अपने बेटी, बहू और पोती के साथ खड़े थे, जिसे देख रणवीर जी खुश होते हुए बोले, अरे धनराज, तू वहां क्यों खड़ा है, आ अंदर आ। रणवीर जी की बात सुनकर धनराज जी अपने परिवार के साथ अंदर आते हैं और रणवीर जी के गले मिलते हुए कहते हैं, कैसा है तू रणवीर? धनराज की बात सुनकर रणवीर बोले, बिल्कुल पहले जैसा मस्त। इतना बोल वे मुस्कुराने लगते हैं। वहीं धनराज की नजर जैसे ही प्रीता पर पड़ती है, वे प्रीता के सामने हाथ करते हुए कहते हैं, हेलो भाभी, कैसी हैं आप? प्रीता भी धनराज के हाथ मिलाने के बारे में सोचती, उसके पहले ही रणवीर प्रीता की कमर को पकड़ अपने करीब करते हुए धनराज को देख बोले, तुझे उसके पूछने की जरूरत नहीं है कि वे कैसी है, मेरे साथ है तो अच्छी ही होगी, और खबरदार जो दोबारा मेरी प्रीता को देखने की या उसके हाथ मिलाने की कोशिश भी की तो। रणवीर की बात सुनकर धनराज अपना हाथ पीछे ले मुस्कुराते हुए बोले, तेरा भाभी के लिए ऑब्सेशन अभी गया नहीं, तू अब भी उसी तरह भाभी के लिए पागल है जितना पहले कॉलेज में हुआ करता था। धनराज की बात सुनकर रणवीर जी बोले, हाँ तो मेरी प्रीत है ही सबसे खूबसूरत जिसके मैं उसके पीछे पागल हूँ। रणवीर की बात सुनकर धनराज हंसते हुए बोले, चला, मैं तुझे अपने बेटे, बहू और पोती से मिलवाता हूँ। इतना बोल वे अपने बेटे और बहू को सबसे मिलवाते हैं और फिर अपनी पोती की तरफ जाते हुए बोले, ये है मेरी पोती मीशा। सब मीशा को देखते हैं, जो अनारकली सूट सलवार पहने, दुपट्टा लिए, अपने बालों को खुला छोड़, अपने चेहरे पर थोड़ा हाई मेकअप किए, मुस्कुराते हुए उन्हें ही देख रही है। वहीं मीशा सबको देख एक एक कर सबके पैर छूती है, जिसे देख दादाजी और बाकी परिवार वाले भी खुश हो जाते हैं कि उन्हें जैसी लड़की चाहिए कि वैसी लड़की मिल गई है। फिर दादाजी उन सभी को बैठने को कहते हैं, जिसके सभी बैठ जाते हैं और नौकर एक एक कर नाश्ता पानी वहां रखे बड़े के टेबल पर रख देते हैं। वे लोग थोड़ा बहुत नाश्ता पानी करते हैं, फिर धनराज रणवीर को देख कहते हैं, अब मैंने तो सबको अपनी पोती मीशा से मिलवा दिया, अब तुम भी रुद्र बेटे को बुला दो। वैसे तो रुद्र सिंघानिया को सभी जानते हैं, पर एक बार मैं चाहता हूँ कि रुद्र और मीशा आपस में बात कर लें, तब जाकर हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं। धनराज की बात सुनकर रणवीर जी बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी रुद्र को बुलाता हूँ। इतना बोल एक नौकर को रुद्र को बुलाने को भेज देते हैं। अब तक परी और अर्जुन भी फ्रेश होकर हॉल में आ गए थे। दोनों हॉल में आ इतने सारे लोगों को देख हैरान थे, लेकिन फिर दोनों को याद आता है कि कल दादाजी ने रुद्र भाई के लिए लड़की वालों को आने को कहा था, जिसे याद कर दोनों समझ जाते हैं कि ये लोग वही हैं। परी अर्जुन के पास जाकर बोली,
क्या वे वही लड़की है जिसने सलवार सूट पहना है? क्या इसी से दादाजी ने रुद्र भाई की शादी तय की है? परी की बात सुनकर अर्जुन बोला, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है, चल देखते हैं कि क्या बात है। इतना बोल वे दोनों सबसे पास चले जाते हैं। सबसे पास पहुंच वे दोनों उन सबको नमस्ते बोल अपना अपना इंट्रोडक्शन खुद देकर वहीं बैठ उनकी बातें सुनने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ रुद्र के कमरे में